الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، ہم لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے، اور ہم ابھی تک یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا قبیلہ کون سا تھا، ان کی رشتہ داریاں کس کے ساتھ تھیں، مکی زندگی ان کی کیسی تھی، اور مدنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کیا کنٹریبیوشنز کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کیا عہدہ رکھتے تھے، اس طرح سے وہ ان کی معاونت کرتے تھے خلافت میں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم اس بات پہ ختم کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے خلافت ملی تھی، تو یعنی وہ خلیفہ منتخب ہو گئے تھے. اور اس میں ہم کافی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ان کے لیے مشاورت کی گئی، کیسے مجلس شورا کے اندر ان کو چنا گیا، کس طرح 3 دن تک مسلمان مشورہ دیتے رہے عبد الرحمن بن عوف کو، اور ہر ایک سے انہوں نے مشورہ لیا، اور اس کے بعد ایک دن وینسڈے کے دن انہوں نے محرم میں ان کو اعلان کر دیا ان کی خلافت کا. تھوڑا سا ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی عادات کیسی تھیں. اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی زنا نہیں کیا تھا، اور کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا. اور خوف خدا کا ان کا عالم یہ تھا کہ اکثر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. موت کا ذکر ہوتا یا قبر کا ذکر ہوتا تو اس کے اوپر اتنے پریشان رہتے تھے، جب سامنے سے جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. مقبروں سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. کسی کو دیکھ لیتے نا، کسی کی قبر پہ جاتے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ آپ جہنم اور جنت کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے اوپر، اتنی جب بھی قبر کی بات آتی ہے اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں. تو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں آسانی ہو گئی تو آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر وہاں پہ مشکل ہو گئی تو آگے کیا ہوگا. تو اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے قبر کو یاد کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً تمام ہی غزوات میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور آپ سے جب بھی موقع ملتا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تحفے بھی لے کر آتے. ایک دفعہ پتہ چلا کہ 4 دن تک آپ کے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا، تو ان کو پتہ چلا تو آنکھوں سے آنسو نکلا. اسی وقت بہت سارا سامان کھانے پینے کا اور 300 درہم لے کے بطور نذرانہ لے کے پیش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس قدر تھا، ان کو اتنا ادب کرتے تھے کہ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، پھر کبھی بھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. اتنا ادب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی، یعنی جب مسلمان ہوئے ہیں کلمہ پڑھا، تو اتنا زیادہ ان کو اس چیز کا خیال تھا. ازواج مطہرات کا خاص طور پہ بہت خیال کرتے تھے. عہد خلافت میں جب سب کے وظائف مقرر تھے تو ازواج مطہرات کا دگنا انہوں نے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کو اتنا محبوب رکھتے تھے کہ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے تو لوگوں نے پوچھا آپ وضو کرتے ہوئے کیوں مسکرا رہے ہیں، تو فرمایا میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ، اس مقام سے گزر رہے تھے، اس جگہ پہ اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا. इसी तरह एक दफ़ा सामने से जनाजा गुजरा तो खड़े हो गए, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही किया करते थे। यानी इतना सुन्नत का इत्तेबा उनको महबूब था, इतना पसंद करते थे कि छोटी छोटी बातों में भी सुन्नत की पैरवी करने को पसंद करते थे। एक दफ़ा असर के वक्त सबके सामने वुजू करके दिखाया कि देखो नबी अलैहिस्सलाम ऐसे वुजू किया करते थे। एक दफ़ा मस्जिद के दूसरे दरवाजे पे बैठ के बकरी का पट्ठा मंगवाया और खाया, और बगैर वजू किए हुए नमाज को खड़े हो गए। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी जगह पे बैठ के खाया था और इसी तरह किया था। यानी ये वो चीजें हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया हुआ कि आप ये करो, ठीक है, इसका कोई हुक्म नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ मोहब्बत की बातें होती हैं। लेकिन जब आपको किसी से मोहब्बत होती ना, फिर कहने की जरूरत नहीं होती कि आप ये करें, ये मेरा हुक्म है, ये करना जरूरी है, ऐसी बातें नहीं होती। जब किसी से मोहब्बत होती ना, तो बस उसकी हर अदाई पसंद होती है, वो जो करता है आपको वही चीज महबूब हो जाती है, ठीक है, फिर बगैर कहे आप करते हैं। इसी तरह हज के मौके पर आप और एक सहाबी तवाफ कर रहे थे। तवाफ में उन्होंने रुकने यमानी का भी बोसा लिया, तो उस्मान रजी अल्लाह तआला उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के इस तरह इसका इस्तलाम कराना चाहा, तो उस्मान रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ये क्या करते हो, क्या तुमने अल्लाह के रसूल के साथ तवाफ नहीं किया? उन्होंने कहा कि हाँ किया है। तो फरमाया जब उन्होंने नहीं ऐसा किया, उसको छुआ, तो फिर मैं क्यों करूं? अगर अल्लाह के रसूल की जो इक्तदा है, जो उनकी फॉलोइंग है, वो सबसे बेहतर है। इस तरह इनके अंदर इतनी यानी तकवा बहुत ज्यादा था, नेकी बहुत ज्यादा था, जुहद बहुत था। आपको जैसे मैंने बताया था कि उमर रजी अल्लाह तआला नो मोटा कपड़ा पहनते थे, खुरदरा कपड़ा, और फिर रूखा पीखा खाते थे, लेकिन इन्होंने बहुत माल और दौलत में जिंदगी गुजारी थी। आप देखें ये थ्रू आउट मालदार रहे हैं। इन्होंने अपने बाप से ही, मतलब उस वक्त से ही माल देखा था, लेकिन इसके बावजूद ये कभी ऐसी ऐश वाली जिंदगी नहीं गुजारते हुए नजर आते। देखिए जब नहीं होता फिर तो थोड़ा बहुत पहन लेना फिर भी आसान है कि इंसान कम पे गुजारा कर ले, जब बहुत होता है ना फिर अक्सर क्या होता है कि इंसान फैलना शुरू कर देता है, फिर वो कहता है अब ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि ऐसी ऐश वाली जिंदगी गुजारी, हमेशा इनकी जिंदगी सादी रही है। और कहा जाता है कि एक कपड़ा होता था जो अरब में बड़ा महबूब समझा जाता था, अमीर लोग पहनते थे, तो कभी इन्होंने नहीं वो पहना था, ना अपनी बीवियों को पहनने दिया था। सादगी का हाल ये था कि घर में इनके पास बहुत सारे लौंडी गुलाम होते थे, लेकिन अपना काम अपने हाथ से करते थे और किसी को तकलीफ नहीं देते थे। रात को जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो किसी को जगाते नहीं थे, खुद ही अपना वुजू का सामान कर लेते, खुद ही जो भी अपना काम है वो कर लेते। तो किसी ने कहा आप नौकरों को क्यों नहीं जगाते, आपके लौंडी गुलाम है उनको किसी को जगा दे, तो कहते थे कि क्यों उनको जगा के उनकी नींद खराब करूं। यानी कितनी बड़ी बात है किसी के ख्याल करने की, हालांकि वो तो उनका काम है, नौकर गुलाम है। हम तो गर्मी में नौकरों को भी खड़ा कर दें, आप अपने मुल्कों में देखें सख्त तरीन गर्मी में भी खड़े होते हैं, तो हम कहते हैं नहीं हम तो एसी में बैठे रहे, ये जलते मरते रहे। वो कहते हैं नहीं इसकी नींद भी ना खराब हो। अगर कोई आपसे सख्ती से बात करता तो नरमी से जवाब देते। एक दफा आमर बिन अल आस ने गुफ्तगू में हजरत उस्मान के वालिद की शराफत पर कुछ ताना कर दिया, तो नरमी से उसको कहते हैं कि इस्लाम में जमाने जाहिलियत का क्या जिक्र, नहीं वो तो पुरानी बातें हो गई, अब उन बातों का क्या जिक्र, उसके ऊपर अब आप मुझे ताना दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हारा बाप भी ऐसा होगा, तुम ऐसे। ये देखिए कि इंसान का किरदार ना इन चीजों से पता चलता है कि जब आपको कोई इंस्टिगेट करे, आपको कोई ऐसा गुस्सा दिलाए, तो फिर आप क्या करते हैं। इसी तरह एक दफा जुमे के रोज मिंबर पे खुतबा दे रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई उस्मान तौबा कर और अपनी ज्यादतियों से बाज आ जा, तो हजरत उस्मान ने उसी वक्त किबला रुख होके हाथ उठाए और फरमाया ए अल्लाह मैं तौबा करने वाला हूँ, पहला तौबा करने वाला जिसने तेरी बारगाह में रुजू किया। ये नहीं कहा कि कौन है वो, भाई खलीफा है, चाहते तो उसी वक्त उठवाते कि कौन है भाई जिसने ये बात कही, तुम्हें क्या पता है कि मैं क्या करता हूँ। आपने हमेशा मुसलमानों के माल में ईसार से काम लिया, कभी बैतुल माल से एक पैसा भी नहीं लिया। सबसे ज्यादा दौलतमंद थे अरब में, लेकिन इन्होंने अपनी दौलत से हमेशा इस्लाम को फायदा ही पहुंचाया। आपने देखा है कि मैंने आपको बहीरे रूमा का बताया था वाकया, वो एक ही कुआं था जो मीठे पानी का था, बाकी मदीना में सारे जो कुएं थे ना वो खारी पानी के थे, इसलिए ही तो सब लोग आते थे ना उस कुएं से लेने के लिए। तो इन्होंने देखे मुसलमानों के लिए उसको वक्फ कर दिया, मुफ्त दिया। फिर आपको मैंने बताया था जंगे तबूक के अंदर कितना माल लेकर आए थे, और फिर मस्जिद नबवी को एक्सपेंशन का जब टाइम आया था तो इन्होंने ज़मीन खरीद के दी थी। इसी तरह फिर आप देखें कि हर जुमे के दिन एक गुलाम आज़ाद करते थे, हत्ता के किताबों में लिखा है कि फिर तो ये गिनती भी ख़त्म हो गई कि कितने इन्होंने गुलाम आज़ाद किए, पता नहीं हज़ारों कर दिए। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जब कहत पड़ा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, तो उस वक़्त इन्होंने जो इनका पूरा काफ़ला माल का आया था उसमें से एक पैसा भी नहीं लिया, तो सारा वक्फ कर दिया। अजीज व कारिब के साथ हुस्ने सलूक करते थे। इनके चचा हकम बिन अल आस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ जिला वतन कर दिया था, तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये उनकी सिफारिश की कि आप उनको माफ़ कर दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया था। लेकिन ये बात सिर्फ इनको पता थी, बाद में खिलाफत के टाइम पे इन्होंने उनको वापस बुलाया था, और ये भी बहुत बड़ी एक ऑब्जेक्शन की जाती है इनके ऊपर कि इन्होंने उनको वापस बुलाया जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिला वतन किया था। और हकम के बेटे हकम बिन अल आस, इनके बेटे थे मरवान, और मरवान बाद में खलीफा भी हुए थे। मरवान के चार बेटे थे, चारों खलीफा हुए थे। और इसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज इन्हीं के बच्चों में से हैं। इन्होंने अपने खिलाफत में अपने रिश्तेदारों को बहुत कुछ नवाजा। इस बात के ऊपर भी इनके ऊपर बहुत तान किया जाता है कि इन्होंने नेपोटिज्म किया, अपने रिश्तेदारों को बड़ा कुछ दिया, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि मैंने कोई बैतुल माल से तो नहीं दिया, मैं तो अपने पैसों से दिया, इसके ऊपर क्या एतराज़। एक दफा किसी ने इनसे एक बड़ी रकम कर्ज ली, तो जब वो वापस देने आए तो इनकार कर दिया, फरमाया कि ये कोई बात नहीं, तुम अपने पास ही रख लो। यानी हमेशा इस तरह बहुत ही फयाजी से इन्होंने काम किया, हमेशा इन्होंने मुसलमानों की खैरख्वाही की। और जब खिलाफत का इनका दौर शुरू हुआ है, तो खिलाफत के दौर में इनकी जो पिछले शुरू के जो साल हैं, 12 ईयर्स इनकी खिलाफत रही है, 12 साल। तो जो शुरू का दौर है यानी मिड तक, वो समझ लें पहले 10 साल ही समझ लें, वो तो बहुत अच्छे रहे, बहुत फतूहात हुई। हत्ता के इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोगों की बहुत खुशहाली हुई, जिंदगी की आसूदगियाँ उनको मिली, लोग बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे थे। कहते हैं एक दफ़ा मैंने देखा कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक आदमी ऐलान कर रहा है, और वो कह रहा है लोगों एक ज़रूरी ऐलान सुनो, हर बंदे की इतला दी जा रही जाती है कि वो ईवाने खिलाफत पहुँच कर अपने हिस्से के तोहफे ले, अतियात वसूल कर ले। तो लोगों आओ, हर एक के लिए अतियात है। ये ऐलान सुनकर लोग ईवाने खिलाफत में जाने लगे और अपने हिस्से के अतियात लेने लगे। फिर उसने ऐलान किया कि लोगों वज़ाइफ आके लोग अपने वजीफे लो, फिर लोग गए अपने वजीफे लिए। फिर कहते हैं एक दफ़ा ऐलान हो रहा था कि लोगों अपने हिस्से का घी और शहद लो, तो वो भी उन लोग जाके लेते थे। फिर एक दफ़ा ऐलान हो रहा था कि कपड़े दिए जा रहे हैं। तो यानी इतनी अमन की फिजा थी, बहुत अच्छा दौर चल रहा था, बहुत यानी ऐसी चीज़ थी कि खुशहाली भी थी, अमनो अमान भी था, मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रहने लगे हुए थे। एक इनके बारे में एक और वाक्य आता है कि एक दफ़ा अपने नौकर से इन्होंने ये नाराज़ होकर उसका कान उन्होंने मरोड़ दिया, जिससे उसको दर्द महसूस हुआ। जल्दी इनको ये बात परेशान करने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, तो अपने वो खादिम को, लड़का था नौजवान था, उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम अपना बदला ले लो और मेरा कान मरोड़ो। तो खादिम बदला लेने से इनकार करने लगा, तो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम मुझसे बदला लो। वो हुक्म की तामील करते हुए सैयदना उस्मान के कान को बस ऐसे नरमी से उसने ऐसे किया, नौकर था नरमी से, कहते नहीं, मेरा कान सख्ती से पकड़ के मरोड़ो, इसलिए कि आखरत का जो किसास है ना, वहां का जो बदला है वो बहुत बड़ा है दुनिया के बदले से। तो जो वहां बदला देना पड़ेगा वो बहुत बड़ा होगा। कभी हमने भी ऐसा सोचा किसी के साथ ज्यादती करते हुए कि जब ये खड़ी हो कि कयामत के दिन मेरे से बदला लेगी तो वो बहुत बड़ा होगा, आज ले ले मेरे से बदला, वरना मैं वहां कैसे इसको बदला दूंगी। और जब अल्लाह की हदूद को कायम करना होता था ना, हद लगानी होती थी, तो उसके अंदर हालांकि इतने नरम मिजाज थे लेकिन उसमें कोई नरमी नहीं करते थे। इनके ऊपर ये भी तान किया जाता है कि इनका एक करीबी रिश्तेदार थे, तो वलीद बिन उतबा इनकी माँ की तरफ से रिश्तेदार लगते थे, तो इन्होंने जी उनको पर हद लगाने में बहुत डिले किया। वो डिले इसलिए था, वो थे वलीद बिन उतबा, वलीद बिन उतबा को शराब पीने के ऊपर हद लगाई जानी थी, तो चूंकि गवाहियां काफी नहीं थी इसलिए डिले हुआ। जब गवाहियां आ गई तो इन्होंने उनके ऊपर हद जारी कर दी। लेकिन इसके ऊपर बहुत बात की जाती है कि क्यों इन्होंने डिले किया और क्यों उन्होंने ऐसा किया। और भी जो बातें हुई वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने रखूंगी कि क्या और भी बातें हैं। लेकिन इतनी खुशहाली का दौर था कि किसी मुसलमान को कहीं से कोई खतरा नहीं था कि कोई मुझे मार देगा या कोई कुछ करेगा या कोई लूटेगा। बहुत इसको समझ लें कि सुनहरी दौर चल रहा था। और एक दफा की बात है कि कहते हैं मूसा बिन तलहा कि मैंने एक दफा सैयदना उस्मान को देखा कि वो मिंबर पे बैठे हुए थे और मौजिन नमाज के लिए इकामत कह रहा था, और वो लोगों के मसाइल सुन रहे थे, इनके हाल मालूम कर रहे थे, और ये के लोगों को बताएं, ये के लोगों से पूछ रहे थे कि चीजों की क्या प्राइसेस हैं मार्केट में, और लोगों की मर्जी मालूम करते थे ताकि उनकी राय के मुताबिक चीजों की प्राइस रखी जाए, यानी कि चीजें को इतनी कॉस्टली हो कि लोग खरीद ना सके। और इनकी दौरे हकूमत में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बहरी जंग की इजाजत इन्होंने दी थी। इससे पहले कोई भी जंग यानी थ्रू सी नहीं हुई थी, ठीक है, नेवी वाली के साथ नहीं कोई जंग हुई थी, सारी जंगें जो थी वो खुश्की पे ही हुई थी। लेकिन सईदना मुआविया बिन अबू सुफियान जो थे, उन्होंने, वो शाम के गवर्नर थे, तो उन्होंने हजरत उमर से भी इसरार किया था कि हमें इजाज़त दें बहरी जंग की, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि इसमें बचने का यकीन नहीं होता था, अगर गर्क हुए तो सारे ही गर्क हो जाएंगे, तो हजरत उमर ने तो इस चीज़ से मना कर दिया था। फिर उस्मान रजी अल्लाह तआला के दौर में इन्होंने फिर दरख्वास्त की मुआविया रजी अल्लाह तआला ने, तो हजरत उस्मान ने भी फरमाया कि मैं तो वो काम नहीं करूंगा जिसकी इजाजत हजरत उमर ने नहीं दी। तो उस वक्त मुआविया रजी अल्लाह तआला ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने बहुत इसरार किया और उन्होंने कहा कि कई जगह पे समुद्री सफर बड़ा आसान है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब हजरत उस्मान को बहुत यकीन दहानी कराई और इसकी वजह से हमारे लिए बहुत से फवायद होंगे, तो उन्होंने ये फरमाया कि ठीक है तुम ये कर तो लो, लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुमने किसी को भी फोर्स नहीं करना कि वो चले साथ, जिसकी अपनी मर्जी होगी वो जाए। लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे और त्राबलस की तरफ, कब्रस जिसको कहते हैं, उसकी तरफ ये बहरी बेड़ा गया था और वहां पे फतूहात हुई। और हम देखते हैं कि बहुत सारी फतूहात हुई इनके दौर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में हुई थी, क्योंकि हजरत उमर के दौर में तो आपको पता है इजिप्ट है, शाम का एरिया ये सारा बनता है, फलस्तीन और जिसमें आज भी सीरिया, जॉर्डन और ईरान के काफी इलाके को उनके जमाने में फतह किया गया था। लेकिन इनके दौर में भी फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और इनके दौर में ट्रिपली जो लीबिया में है वो फतह हुआ, फिर मोरक्को, अलजजायर, फिर स्पेन, फिर साइप्रस जिसको मैंने अभी आपको बताया, साइप्रस भी, हाँ हाँ साइप्रस के लिए बहरी बेड़ा भेजा गया था, ट्रिपली के लिए नहीं, साइप्रस के लिए भेजा गया था, क्योंकि कहा गया था कि रोमी जो है वो वहां से आके मिस्र तो मुसलमानों की हुकूमत थी, मिस्र और शाम को के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो हमें इस एरिया को, साइप्रस को हमने फतह करना है ताकि उनके लिए डोर क्लोज हो जाए। तो मुसलमान वहां तक गए थे और फिर आगे फतुहात करते चले गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू का तो दौर बड़ा अच्छा था, 24 हिजरी में ये खलीफा बने थे, और इन्होंने आके जो सबसे पहली एक चेंज की थी वो वही थी जो कि हज़रत उमर वसीयत कर गए थे, और वो क्या थी कि सैयद ना साद बिन अबी वक्कास को मुगीरा बिन शोबा की जगह पे कूफा का गवर्नर बनाया जाए, ये पहली इन्होंने तकरीर की थी। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों के ऊपर भी तान करते हैं कि क्यों इन्होंने फलां को लगाया और क्या इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जी साद बिन अबी वक्कास को लगाया था मुगीरा बिन शोबा की जगह, क्योंकि हजरत उमर ने ये वसीयत की भी थी। 24 हिजरी में छोटे छोटे वाकयात पेश आए, आजरबैजान आर्मीनिया वहां उनको फतह किया, वहां के लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था हजरत उमर के वक्त से। पता है आपको कि हजरत उमर का जो था दौर और उमर रजी अल्लाह तआला की शख्सियत ऐसी थी कि लोग बहुत डर के रहते थे, और कभी कभी ऐसे लगता है कि सख्ती भी जरूरी होती है, खास तौर पे जब आपने निजामे हुकूमत चलाना हो, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। और आप अभी देखेंगे आज के सबक के अंदर कि उस्मान रजी अल्लाह तआला को कितना सताया गया और कितने सारे शरपसंदों ने सर उठाया सिर्फ उनकी नरमी से फायदा उठाते। तो वो लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, इसी तरह रोमियों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, तो इन्होंने फिर हजरत अमीर मुआविया की मदद के लिए 6,000 लोग यहाँ से भेजे थे। फिर मिस्र के वाली उमर रजील तुम के दौर में अमर बिन अल आस थे, और आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको अब्दुल्ला बिन अबी सरहा का बताया था ना, याद होगा उम्मीद है। तो इन्होंने अमर बिन अल आस की जगह अब्दुल्ला बिन अबी सरहा को रख दिया था, इसलिए कि वहां से इतना ज्यादा टैक्स नहीं मिल रहा था, उमर के जमाने से ही वो टैक्स में कमी हो गई थी। इसलिए हजरत उस्मान ने वहां से टैक्स का मुतालबा जब किया कि ज्यादा बढ़ाओ, तो अमर बिन अल आस ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा ऊंटनी दूध नहीं दे सकती। इस पर हजरत उस्मान ने उनको हटा के अब्दुल्ला बिन अबी सरा को पूरे मिस्र का गवर्नर बना दिया। तो मिस्रियों पर अमर बिन अल आस की बड़ी धाक बैठी हुई थी, वो उनसे तो डरते थे, लेकिन जब अब्दुल्ला बिन अबी सरा आए तो उन्होंने फिर बगावत के सोचना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से फिर दोबारा हजरत उमर ने मिस्र वालों के मशवरे से इस फितने को रोकने के लिए अमर बिन अल आस को दोबारा वहां पे मुतय्यन कर दिया, और उन्होंने फिर अपनी अच्छी तदबीर के साथ बगावत को खत्म कर दिया। लेकिन जो खराज लेने का, जो टैक्स लेने का इंचार्ज अब्दुल्ला बिन अबी सराह को ही बनाए रखा। फिर 26 हिजरी में साद बिन अबी वक्कास की माजूली के बाद के का एक उनको भी माजूल कर दिया था, एक उसका सबब था कि उन्होंने बैतुल माल से कर्ज लिया था और वो उसे उनसे वापस लौटाया नहीं जा रहा था, और जब बैतुल माल का जो इंचार्ज था उसने उनसे तकाजा किया तो फिर उनसे उन्होंने उजर पेश किए, एक्सक्यूजेस दिए, जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया, क्योंकि हजरत उस्मान ने फरमाया कि ये एक सही नहीं है, आपने इतना बड़ा कर्ज लिया और आप वापस नहीं दे रहे। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जिनकी वजह से आगे ये बात आएगी कि बहुत सारी बातें शुरू हुई थी इनके ऊपर, जो लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। इसी तरह और भी कई इन्होंने चेंजेस उसके बाद किए, अब इतनी ज़्यादा उसके अंदर हम नहीं जा सकते इसलिए कि वो बहुत आप लोगों के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, मगर काफ़ी चेंजेस जैसे वो समझते थे कि ये सही है उसके मुताबिक उन्होंने चेंजेस की। 30 हिजरी में अब्दुल्ला बिन आमिर बसरा के नए वाली थे, और सईद बिन आस ये खुरासान तक पहुंच गए थे। खुरासान आपको पता है ईरान का एक सूबा है, और इमाम नसाई इधर इधर ही से थे, तो इमाम नसाई ना सुन हदीस की बुक आप नसाई पढ़ते हैं, वो भी इधर से थे। तो इन्होंने इन इलाकों को फतह किया और काबुल तक और सेंट्रल एशिया तक मुसलमान पहुंच गए थे, निशापुर तक, आगे भी सेंट्रल एशिया तक। तो अब ये बड़ा अमनो अमान चल रहा है, बड़ी मालो दौलत भी आ रहा है। जाहिर है इतने इलाके जब फतह होंगे तो वहां से कितना माले गनीमत आएगा। तो बड़ी प्रॉस्पेरिटी थी, बड़ी खुशहाली थी। लेकिन आपको पता है बाज़ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को याद करके रोते थे, और ये ऐश और ये सामान देख देख के ना वो गमजदा रहते। क्यों? इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई को जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मुझे तुम्हारे पर फकरो फाके का खौफ नहीं है, मुझे तुम्हारे पर ये खौफ है कि एक दिन आएगा तुम्हारे पास बहुत माल होगा और फिर तुम इन्हीं के मुकाबलों में लग जाओगे, फिर एक दूसरे के साथ लड़ोगे, एक दूसरे के साथ मरना मारना होगा और उसी तरह हलाक होगे जैसे दूसरे अहले किताब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखें मालो दौलत नहीं था, लेकिन आपस में मोहब्बत ताल्लुक ये था। लेकिन जैसे जैसे माल दौलत ओहदे फुतूहात होने लगी, तो ओहदे भी होंगे, आगे से आगे एम्पायर बढ़ रही है। मुस्लिम एम्पायर बहुत दूर तक चली गई थी, अफ्रीका तक, एशिया का, यूरोप के इलाके कुछ, आप देखें इस्तंबुल तक पहुंच गए। तो इतनी बड़ी एम्पायर जब होगी तो उसका निज़ाम भी चलाना होगा, उसमें कई लोग खुश होंगे, कई लोग नाराज होंगे, सबको खुश नहीं कर सकते ना। तो वो सहाबा जो थे ना, वो इतना इस चीज़ के ऊपर गमगीन रहते थे कि देखिए जैसे हजरत उमर, नहीं, आप, मैंने आपको बताया था एक दफा उनके पास सामने बहुत सारा माल आया था तो रोने लगे थे कि एक दिन वो आ जाएगा मुसलमानों के ऊपर कि इतना माल होगा। आज भी आप देखें मालो दौलत की फरावानी अरब कंट्रीज में देखें कितनी है, हम हमारे पास भी है। हम क्यों ये कहें कि हम तो बिल्कुल इस तरह में रहते हैं फकरों वाके में, हम सब उन लोगों में से जो बहुत मालदार लोग, अगर आप देखें तो चाहे कोई कितना भी कह दे कि नहीं जी हम तो बहुत गरीब हैं, जब आप खाते हैं पीते हैं और आपके सर पे छत है तो आप मालदार हैं। ठीक है, तो जब माल आ जाता है ना तो साथ फितने भी आते हैं। अबू जर गफारी उस वक्त लोगों को कहते थे, दौलतमंदों को, इनको कहते थे कि मत जमा करो, आप लोग ये ऐश की जिंदगी मत गुजारो, एक दिन का भी जमा करके अगले दिन मत खाओ, आज का बस आज ही होना चाहिए, बाकी सब अल्लाह के रास्ते में दे दो। तो जब वो इस तरह से लोगों को कहने लगे तो अमीर मुआविया ने फिर हजरत उस्मान के पास मैसेज भेजा कि इनको आप प्लीज मदीना बुलवा लें, क्योंकि ये तो यहाँ पे लोगों को चैन से नहीं रहने दे रहे। तो उन्होंने इनको मदीना बुलवा लिया। तो जब इन्होंने यहाँ पे भी आके देखा तो लोगों ने बड़े बड़े मकानात बना लिए हुए थे, तो इतना इनको तकलीफ हुई कि भी ये चले ही गए वहां से, क्योंकि उस्मान उनको मना करते थे कि आप ऐसे ना कहें लोगों को। लेकिन आपको जब इनकी जिंदगी पता चलेगी ना, ये जोहद और तकवे में बहुत ज्यादा थे, बहुत आगे थे। एक दफा कोई इनके घर आया ना तो घर में सामान नहीं था, तो सुभान अल्लाह उसने कहा कि आपका सामान कहाँ है, तो कहते अगले घर भेज दिया। उसने कहा अगले घर वो कौन सा? कि अल्लाह के पास। इतने ज्यादा जुहद और तकवा वाले थे। बहुत प्यारी इनकी भी जिंदगी की बातें हैं। तो ये जो ऐसे लोग थे ना, वो जाहिर है लोगों को रोकते थे टोकते थे, तो किसी को भी ये पसंद नहीं आता। तो जब उस्मान रजी अल्लाह उन्होंने इनको मना किया तो ये फिर निकल के चले गए और एक गांव में चले गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सबब हुए कि ये डाउनफॉल कैसे आया, कौन से ऐसे रीजंस हुए कि इस एम्पायर के अंदर बगावतें शुरू हो गई और ऐसी चीजें कि हजरत उस्मान की शहादत तक फिर ये चीज पहुंच गई। तो एक सबब, एक पहली वजह इसकी ये है कि जो सहाबा कराम की नस्ल थी ना, जो तकवा के अंदर टॉप लेवल पे थे, वो नस्ल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। जो रह गए थे वो भी इतने बूढ़े हो रहे थे कि उनकी औलादें अब आगे आ गई थी, और उन औलादों के अंदर वो तकवा नहीं था जो उनके पेरेंट्स में था। एक तो ये बात है, दूसरी ये कि कुरैश जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर कुरैश हो तो उनको पहले कोई ओहदा या इमारत या वो दी जाए। तो जब उनको ओहदे दिए गए तो दूसरे लोगों को बहुत बुरा लगने लगा, और इन कुरैश का भी ये हाल हो गया कि इनके नौजवानों ने भी ये समझना शुरू कर दिया कि ये बस हमारा हक है, स्पॉयल होने शुरू हो गए ना। और दूसरे लोगों का तो ये हाल था कि वो तो कहते थे कि इनको क्यों, हम भी तो साथ हैं, हमने भी इस तरह मुसलमानों के साथ मिलके हम जंगे करते हैं, और इनको ओहदे क्यों मिलते हैं। फिर आप देखें कि जैसे एक्सपेंशन होती गई एम्पायर की और जगह पे मुसलमानों का कब्जा होता गया, तो जो वहां के लोग थे ऑब्वियसली कोई भी पसंद नहीं करता कि कोई और आके उनके ऊपर हुकूमत करे, तो उनके दिलों में भी इंतकाम था कि हम इनसे इंतकाम लें। फिर मैंने जैसे आपको एक वजह बताई कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला बहुत नरम दिल थे और बड़े मुरव्वत वाले थे, अमूमन लोगों से सख्ती नहीं करते थे, इसकी वजह से भी जो शरपसंद लोग थे ना उनके हौसले बढ़ जाते थे। हज़रत उमर का तो आपको पता है ना, उन्होंने तो देखना नहीं होता था, उन्होंने तो कहना होता था कि इसका सर उड़ा दो बस। तो उनकी फिर पॉलिसी सही रही ना, कि फिर लोग इतना डरते थे कि किसी की जरूरत नहीं होती थी चाहे वो कहीं का भी गवर्नर हो। लेकिन ये ना इंसान के अपने बस में नहीं होता, उसकी एक तबीयत का हिस्सा होता है। कई लोगों की तबीयत ही ऐसी होती है नरम मिजाजी होती है, कई लोगों की तबीयत में सख्ती होती है। वो सख्त तबीयत वाले लोग भी कहीं काम आते हैं और नरम तबीयत वाले भी कहीं काम आते हैं। और इसी तरह उस्मान रजी अल्लाह तआला चूंकि उमवी खलीफा थे, जाहिर है इनके जज्बात बनू उमैया के साथ ज्यादा थे, तो जब अपने जाती माल से भी उनकी मदद करते थे तो लोग जो शरपसंद लोग थे, आपको पता है जिसने किसी में बुराइयां निकालनी हो वो उसकी भलाई को भी देख के कहीं ना कहीं से कुछ निकाल ही लेगा। तो उन्होंने ये प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया कि ये तो अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं। बाज दफा ऐसा भी होता था कि चूंकि जो भी आपने अपॉइंट किए हुए लोग वो खलीफा के अंडर होने चाहिए, उसका कहना मानने वाले होने चाहिए, उसके ओबीडियंट होने चाहिए। लेकिन जब जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूसरी नस्ल आ रही थी वो उतने ज्यादा तकवा में नहीं थे जैसे पहली नस्ल थी, तो जो आने वाले थे वो उतना बात नहीं माना करते थे। तो ये फिर अपने लोगों को भी बाज दफा इसलिए लगा देते थे ताकि मेरी बात तो सुने। अच्छा, फिर जो महकूम कौमें थी ना जिनके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा किया था, वो चाहते थे कि इनकलाब आ जाए, और ताकि कोई ना कोई बगावत होगी, इनकलाब आएगा तो हमारे हालात कुछ सही और हम दोबारा आ जाएंगे। अब इसी तरह एक चीज, मुसलमानों ने गैर कौमों में शादियां करने शुरू कर दी। जब गैर कौमों में शादियां की उनकी औरतों के साथ, तो उनसे जो बच्चे हुए उनकी भी मुसलमानों के साथ कोई एफिलिएशन नहीं थी, उनसे भी बहुत सारे फितने उठे। और इसी तरह जो आम अरब कबाइल थे वो समझते थे कि हम भी कुरैश से बढ़ के हैं, अगर कुरैश को कुछ मिल रहा है तो हम भी इस काबिल हैं कि हमें भी उस तरह ही नवाजा जाए। जो मजूसी थे, जो जो ये आग परस्त होते हैं, आग की पूजा करते हैं, वो भी चाहते थे कि ऐसा कोई बंदा आए हजरत उस्मान की जगह पे जो हमारा तरफदार हो ताकि हमें कुछ ज्यादा मिले। यहूदी जो थे वो भी चाहते थे कि मुसलमानों में कोई इख्तलाफात पैदा हों ताकि हम ऊपर आए। तो इस तरह से हर जमात अपनी अपनी कोशिश में लगी हुई थी। कुछ आपस में मुसलमानों की टसल होने लगी, अरबों के बीच में भी होने लगा, फिर कुछ यहूदी मजूसी, फिर और जो कौमें हैं वो सर उठाने लगी। इस तरह से करके फितने खड़े होने लगे, और उस्मान ने इन फितनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन आग ऐसी थी जिसको बुझाना आसान नहीं था, और फितना परदाजों का दायरा अमल वसी से वसी होता गया। इसमें आपको मैं पहले कूफा का बताती हूँ। सईद बिन आस जो कूफा के वाली थे, उनसे वहां के जो शरपसंद थे उनको बड़ी दुश्मनी थी, उनको बदनाम करने के लिए रोज नई नई बातें निकाल लेते थे। और ये भी कहा जाता है, एक मतलब बात कि ये लोग क्या करते थे, खत लिख के ना दूसरी जगह भेज देते थे कि ये हमारा यहाँ पे ये गवर्नर तो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है। फिर वहां जाके ना वो शरपसंदी लोगों को खत पढ़ पढ़ के सुनाते थे, देखो उनका गवर्नर ऐसे करता है। तो वो कहते थे अच्छा हम तो बड़े अच्छे रह गए, वो तो बेचारे मुसलमान कितनी मुसीबत में। तो एक ना देखें जो भी एक बगावत होती है, या जो जैसे हजरत उस्मान की शहादत का एक मरहला पहुंचा, एक दिन में नहीं हो गया। ये जो बगावत के चीजें हैं ये सर उठाना शुरू हो गई थी 30 हिजरी से, और 5 साल तक ये चीजें ग्रो होती रही हर इलाके के अंदर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कल्मिनेशन कहाँ हुई, फिर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे। तो ये जो चीजें होती हैं, पहले लोगों के माइंड चेंज किए जाते हैं, देखा वो तो कितना जुल्म कर रहे हैं, देखा वो तो कितने, देखा वो तो अकरबा परवरी करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, उन्होंने देखो सब जगह अपने अपने रिश्तेदार लगा दिए, उन्होंने ऐसा किया, वो तो बैतुल माल से खा जाते हैं, खा लिया इन्होंने, ये कर लिया उन्होंने, वो कर। जब सब लोगों का ऐसा परसेप्शन हो जाता है ना, तो फिर किसी को मारना मरना कोई मुश्किल नहीं रहता। अब वो पता है हिटलर ने भी ऐसे ही किया था, उसने भी लोगों के दिमाग चेंज कर दिए थे, और फिर उसके बाद ही फिर उसने यहूदियों के साथ जो किया वो तो आपको सबको पता है। तो क्यों नहीं कोई उनके लिए खड़ा होता था, क्योंकि तो उसने ऐसा ऐसा उनका दिमाग, जैसे मुसलमानों के खिलाफ जब ऐसे प्रोपोगंडा शुरू हो गए थे, एक वक्त था कि जब ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये फनेटिक हैं, ये टेररिस्ट हैं, तो अब क्या होता है जब ऐसा परसेप्शन आम कर दिया जाता है ना, और हर कोई ये समझने लगे ये तो टेररिस्ट है, ये तो टेररिस्ट है, तो हर कोई कहेगा इनको मारो बेशक, ये तो हैं ही सारे ऐसे। तो ये एक पब्लिक ओपिनियन का पहले बनाया जाता है, फिर उसके बाद ये चीजें शुरू होती हैं। फिर इसी तरह बसरा में, वहां पे भी फितनों परवर एक जमात थी, हजरत उस्मान ने यहां से भी कुछ लोगों को मुल्क बदर कराया, लेकिन फितने की आग इतनी भड़क चुकी थी कि मामूली छींटों से तो वो बुझने वाली नहीं थी, और इधर उधर उनको भेजने से भी पूरी पूरी इसके ऊपर वो, अब मैं उसके ऊपर जा नहीं सकती वरना पूरी हमारी क्लास इसमें ही खत्म हो जाएगी, कि कैसे इन लोगों को बिठा के फिर अमीर मुआविया के पास भेजा। उस्मान का ये होता था कि वो जब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होता था ना, तो अमीर मुआविया से भी रुजू करते थे, तो उनके पास शाम में भेजा इन फितना पर लोगों को। उन्होंने उनको बहुत समझाया, उनको बड़े एज अ गेस्ट रखा, उनको बड़ा खिलाया पिलाया, समझाया, इतना समझाया, लेकिन कितने दिनों के बाद भी उनको ये पता चला कि नहीं ये वो बोले कि वो लोग होते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ के खींचना शुरू कर दी और उनको टॉर्चर क्यों, तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ पे नहीं रह सकते। फिर उस्मान रजी अल्लाह तआला को भेजा कि ये तो संभल ही नहीं रहे किसी बात, उन्होंने उनको आगे भेजा। ये एक्चुअली शुरू कैसे हुआ था मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कि इसका सबसे बड़ा एक कैरेक्टर था, और वो कौन था, वो एक यहूदी था जो नया नया मुसलमान हुआ, उसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। आप इसकी हर जगह देखेंगे कि इसके नाम आपको बुक्स में मिलेंगे, अब्दुल्ला बिन सबा। उसने साजिशें शुरू की और उसने हर जगह जा जा के फिर वहां पे अपने जैसे हम ख्याल लोग बनाए, फिर अपने एजेंट्स उसके यहाँ पे भी बैठे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं, उनके साथ खुफिया तदबीरें, उनके साथ साजिशें और उनके साथ बातें, और इस तरह से ये फैलता ही चला गया। और बाज लोग जो थे जैसे अहले मिस्र जो थे वो हजरत अली से अकीदत रखते थे, अहले बसरा जो कहते थे हजरत तलहा को बनाना चाहिए था अमीर, फिर यानी खलीफा, अहले कूफा कहते थे हजरत जुपैर हमें पसंद है। आपको पता नहीं ये वो सिक्स की जमात है, 6 लोगों की, यही लोग हैं तलहा जुबैर अली, ये वो इनके हामी थे। अहले इराक की जमात जो थी वो सारे ही कुरैश के खिलाफ थी, तो किसी की पसंद कोई है, किसी की कोई है, वो कहते हैं हजरत उस्मान को हटाओ इनको लगाओ, कोई कह रहा है उनको लगाओ। अब अब्दुल्ला बिन सबा ने हिकमत अमली क्या की, उसने कहा कि सारों को एक जगह ही पे कर दो, उसने कहा इनको पहले हटाएं तो सही, हम बाकी लगाने की तो बात की बात है, पहले तो इनको हटाओ, क्योंकि यही है सबसे बड़ा फसाद, अल्लाह माफ करे। हर जगह फितने की आग भड़कने लगी, बदअमली होने लगी, और उसने क्या हिदायत की अपने लोगों को कि तुम ऊपर ऊपर से नेक बन के और मुत्तकी बन के फिर लोगों को वाज करो, उनको तकरीर करो और उनको अपना साथ मिलाओ। और फिर उसने कहा कि जो गवर्नर और जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जो हजरत उस्मान ने जिनको अपॉइंट किया हुआ है उनके खिलाफ लोगों को करो, उनको बदनाम करो, और हर जगह पे ये फैलाओ कि देखो ये हमारा अमीरुल मोमिनीन कैसा है, ये अपने लोगों को नवाजता है और ना इंसाफी की बात करता है। ये सो अनफेयर। इन तरीकों से आपको पता है कि ये चीज़ें, और जैसे मैंने आपको बताया अभी वलीद बिन उकबा जिसने शराब पी थी और उसके ऊपर हद जारी कर ली, क्योंकि उस्मान रजी अल्लाह तआला का रिश्तेदार है। हद जारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि गवाह इतने नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं ये चूंकि इसका रिश्तेदार है ना, देखा इसलिए इसके ऊपर हद नहीं नाफिज कर रहा। फिर ये अब्दुल्ला बिन सबा जो था, इसने इतनी तरह के अकीदे बनाए, और आज जो शिया लोग हैं ना, वो खास तौर पे इसी इन्हीं अकायद को आज भी फॉलो कर रहे हैं। और ये बंदा वो था जिसने सबसे ज्यादा इन फितनों की आग को भड़काया और आगे से आगे फैलाया। और इसी तरह 31 हिजरी में आप इससे अंदाजा करें कि कैसर रोम ने 500 जंगी बेड़ों के साथ मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, और मुसलमान बड़े खौफो हरास में थे। इस वक्त भी जो शरपसंद ये टोला था ना, ये हटा नहीं अपने फितनाबाजियों से। और मोहम्मद बिन अबी हुजैफा और मोहम्मद बिन अबी बकर, कौन है दो? मोहम्मद बिन अबी बकर, अबू बकर के बेटे, मोहम्मद बिन अबू हुजैफा, अबू हुजैफा, अब ए, अबू एक हुजैफा, एक अबू हुजैफा, ठीक है, अबू हुजैफा के बेटे मोहम्मद थे। और ये इनको सहाबी कह सकते हैं इसलिए कि ये 11 साल के थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तो ये दोनों इतने बड़े सहाबा के बेटे हैं। मोहम्मद बिन अबू हुजैफा जो है ना, इनके वालिद अबू हुजैफा पहली हिजरत हबशा भी उन्होंने की थी, और जब ये उसके खिलाफ जिसने नबूवत का दावा कर दिया था उसके खिलाफ जब जंग हुई थी, तो तब भी उसके अंदर वो शहीद हो गए थे। हजरत उस्मान ने इनको पाला था, लेकिन ये भी उनके चक्कर में फंस गए। और जो इस्लामी जो उस वक्त उनके कमांडर थे, वो जब नमाज पढ़ाने लगे तो बेमौका तकबीरें बुलंद कर रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अबी सरा की मुजम्मत कर रहे हैं क्योंकि उसके भी खिलाफ थे, और मुजाहिदीन से कहते थे तुम रोमियों के मुकाबले में जिहाद करने जाते हो, हालांकि इस्लाम को खुद मदीना में मुजाहिदीन की जरूरत है। वो लोग कहते हैरत से कि मदीना में क्या जरूरत है, तो कहते क्यों, उस्मान को देखो, उस जालिम को हटाना इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत है। अरे ये वो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मोहम्मद बिन अबू जैफा और मोहम्मद बिन अबू बकर, तो ये इनमें शामिल हो गए थे ना। और देखिए कितने बड़े सहाबा के बेटे हैं। लेकिन वही बात है कि जब प्रोपोगेंडा फैलता है ना, तो कभी सादा लोग भी साथ चल पड़ते हैं, ना समझ लोग। और फिर कहते हैं कि सबसे बड़ी इस्लाम की तो खिदमत यही है, देखो वो अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर की सुन्नत है उसको उन्होंने छोड़ दिया है, देखो उन्होंने बड़े बड़े सहाबा कराम को हटा के और अपने रिश्तेदारों को लगाया हुआ। हत्ता कि जब मुजाहिदीन जाके लड़े, अल्लाह ताला ने उनको फतह दी। अच्छा एक और बात देखें, सुभान अल्लाह, मैं तो हैरान हूँ कि जब मुसलमानों का जो शिप था वो जा रहा था, तो ये एक कश्ती में सवार हो गए और उसके साथ साथ उसको फॉलो करते जा रहे हैं, और जहां वो लंगर करता था ना शिप, तो वहीं पे खड़े होकर उनको वाज करने शुरू करते थे, अपने ख्यालात बताते थे, तुम लोग क्यों जा रहे हो, वापस मुड़ जाओ। फिर खैर मुसलमानों को जब फतह हो गई तो मुसलमानों ने इनको मलामत किया कि तुम लोग तो जिहाद के लिए आए ही नहीं, तुम कैसे लोग हो। तो उन्होंने कहा हम उस जिहाद में कैसे हिस्सा ले सकते हैं जिसका इंतजाम जो है वो उस्मान ने कराया हो। तो अब्दुल्ला बिन अबी सरा ने जब देखा कि ये दोनों किसी तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो उनके साथ सख्ती की, उनको मना किया और उनको कहा खुदा की कसम अगर अमीनुल मोमिनीन का ख्याल ना ना होता तो मैं तुमने इस चीज का मजाक चिखाता, ये जो तुम फसाद कर रहे हो। आप देखेंगे कि मुसलमानों को हमेशा जब नुकसान पहुंचा है ना, अपने अंदर से ही पहुंचा, कभी बाहर वाले आके उनका दरवाजा नहीं तोड़ सके जब तक वो खुद अपना दरवाजा नहीं खोलते। जब मैं ये पढ़ रही थी मुझे इतना दुख हो रहा था, मेरा दिल इतना तकलीफ में था, कैसे देखो ऐसे ही तो नहीं मुसलमानों का डाउनफॉल हो, अपनों में से ही उठे। हर दौर में मीर सादिक मीर जाफर रहे हैं, हर दौर में। तो मदीना,
हाँ हाँ
जी मदीना भी फसादियों से खाली नहीं था। वहां पे भी लोग, जाहिर है इनकी जमात का कोई ना कोई असर तो यहाँ पे भी पहुंचा था। 35 हिजरी में जिसमें हजरत उस्मान की शहादत हुई है, उस वक्त भी जो फसादी थे वो मदीना में इतने दलेर हो गए थे कि बाहर के जो फसादी थे उनकी मदद से खुद अमीरुल मोमिनीन के ऊपर बातें करने लग गए थे, उनके ऊपर हाथ उठाने लग गए थे। एक दफा जुमे के दिन उस्मान रजी अल्लाह तआला मिंबर पे खुतबा दे रहे थे। अभी हम्द व सना शुरू की थी कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, उस्मान अल्लाह की किताब को अपना तरीका बना। तो बड़े तहम्मुल से उसको कहते हैं, नरमी से, कि बैठ जाओ। दूसरी मरतबा खड़े होकर उसने फिर यही कहा, उस्मान रजी अल्लाह तआला ने फिर बैठने का कहा। 3 दफा यही हुआ। इसी तरह खुतबे के दरमियान ही ऐसी मतलब आवाजें ऊंची होने लगी। हर दफा उन्होंने नरमी से बैठने का फरमाया, लेकिन उसकी साजिश तो पहले से तय हो चुकी थी ना। सारे जो मुफसिद थे और भी तो थे जो वहां पे थे, और वो खड़े हो गए और उन्होंने इतने पत्थर बरसाए कि उस्मान रजी अल्लाह तआला जख्मों से चूर होके मिंबर से फर्श पर गिर पड़े। मगर सबर का ये आलम था कि उसके बावजूद कोई गुस्सा नहीं। तो इनको इतना ज्यादा बदनाम कर दिया था ना कि कोई, अब सब समझने लगे थे कि जैसे मैं आपको बता रही ना कि जब एक दफा बातें शुरू होती है ना, ऐसे है, ऐसा है, ऐसा है। देखिए मिसाल के तौर पे किसी को कहेंगे चोर है, आप भी कहना शुरू कर दें, आप भी कहना शुरू, आप भी कहना शुरू। एक दिन मैं कहूंगी नहीं है, दूसरे दिन भी कहूंगी शायद है ही, तीसरे दिन कहूंगी हाँ वाकई ही है, देखो सारे ही कह रहे हैं ना। तो इनके ऊपर जो एतराजात थे, यही जो जैसे मैंने आपको बताए हैं, अपने खानदान को फौकियत देते हैं जी, बड़े बड़े सहाबा को उन्होंने पीछे कर दिया है जी, इन्होंने ऐसे कर दिया है कि ना अहल ना तजर्बाकार लोगों को आगे ले आए हैं, और फलां को इन्होंने बना दिया गवर्नर, फलां को बना दिया। ये इतनी सारी बातें हैं कि मैं उनके अंदर जा नहीं सकती कि किसको इन्होंने किसकी जगह किया और उसकी क्या वजह थी, किसको इन्होंने हटाया उसकी क्या वजह थी। लेकिन अगर आप कभी देखना चाहें तो किताबों में सब लिखा हुआ। हाँ, मगर ऐसे लोग आज भी हैं जो इन प्रोपेगेंडा से इतने ज्यादा मुतासर हैं कि वो हजरत उस्मान को फिर भी कहते हैं कि ये ऐसे हैं। और आप उनमें अल्लाह ताला हिदायत दे के शिया लोगों को देखें कि आज वो अपने मिंबरों पर कैसे इन सहाबा के बारे में जुबान इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको जन्नत की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उनके बारे में ये बात होने लगी। और फिर एक और इल्जाम ये था कि बैतुल माल में ये जो है ना, में से रद्दबदल करते हैं बैतुल माल में। हालांकि ये तो खुद इतने मालदार थे, इनको इन्होंने तो हमेशा अपने पैसों से मुसलमानों की मदद की थी। बैतुल माल से लेना तो क्या था, और बैतुल माल में से अपने खानदान को देते हैं। तो एक दिन फिर खुतबा देने के लिए खड़े हो गए और फरमाया, लोग कहते हैं कि मदीना में अपने खानदान वालों से मोहब्बत रखता हूँ और इनके साथ मैं सखावत करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत ने मुझे जुल्म की तरफ मायल नहीं किया, बल्कि मैं सिर्फ उनके वाजिबी हकूक अदा करता हूँ। इसी तरह फयाजी भी अपने माल से करता हूँ, मुसलमानों का माल मैं इसमें हलाल नहीं समझता। फिर भी उन्होंने, और फिर मैंने आपको जैसे बताया कि चचा को अपने वापस क्यों लेकर आए, हकम को क्यों वापस लाए, ये जब आपसे सलम ने जिला वतन किया था, तो वो तो आपसे सलम ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि ठीक है उसको माफ कर दिए। उनके बेटे मरवान के साथ इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी सरा जब त्राबलस की तरफ उनको भेजा था, तो कहा था कि अगर तुम फतह याब हुए, अगर तुम कामयाब हुए, तो माले गनीमत का 1/5 हिस्सा तुम्हें दूंगा इनाम के उसके अंदर के ये। और फिर उनको दिया तो लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया, देखा अपने रिश्तेदार को देखो इतना हिस्सा दे दिया। तो उन्होंने कहा लोग एतराज कर रहे हैं आप वापस कर दें, तो उन्होंने वापस कर दिया। मगर ये भी एक बहुत बड़ा एतराज किया जाता था। फिर एक ये भी एतराज था कि जो चरागाह, जो गवर्नमेंट की चरागाह है जिसमें फौजी घोड़े और ज़कात के और बैतुल माल के और ये सब चीजें जो वो वहां पे चरते हैं, और चरागाहें होती थी, इसमें आम लोगों को क्यों नहीं चराने दिया जाता। तो वो कहते थे कि ये सरकारी खर्च से तैयार हुई है, इसमें आम लोगों को तो नहीं चराना चाहिए अपने उनको। फिर कहते हैं अबू जर को इन्होंने जिला वतन किया, हालांकि वो खुद निकल के चले गए थे। अबू जर गफारी का भी आपको बताया ना, तो वो खुद निकल के चले गए थे। और एक इनके ऊपर ये भी एतराज़ किया जाता है कि इन्होंने मुसहफ को जलवाया था। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि असल में हज़रत उस्मान ने तो खुद इस अल्लाह की किताब की हिफाजत के लिए और फितनों को ख़त्म करने के लिए खुद ये काम किया था कि इनके पास जब ये इत्तला आई थी कि जब मुसलमान मुमलिकत बहुत बड़ी हो गई थी, तो इनके पास इत्तला ये आई कि डिफरेंट जगहों के लोग अपने डायलेक्ट के मुताबिक जो कुरान पढ़ रहे हैं तो वो उसकी वजह से झगड़े पैदा हो रहे हैं। कोई कह रहा है ये कुरान है, कोई कह रहा है ये, जैसे आप ऐसे समझ लें, आप सरसलम के दौर में तो आपको पता है ना डिफरेंट जगहों पे कुरान था, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने क्या किया, उसको एक जगह पे कंपाइल कर लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी डिफरेंट लोग जब आते थे, तो जैसे आप समझे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में फर्क है, ठीक है, उर्दू भी इंडिया के लोग भी उर्दू बोलते हैं, पाकिस्तान के लोग भी उर्दू बोलते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है, ठीक है। इसी तरह आप पाकिस्तान में भी देखें डिफरेंट इलाकों में जो बोली जाती है, तो हर में कोई डायलेक्ट का फर्क है ना। तो इस तरह वो पढ़ते तो यही कुरान थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल अपनी जुबान के मुताबिक उनके था। तो हजरत उस्मान ने के पास जब ये इत्तला आई, तो इन्होंने ये किया कि इसको एक डायलेक्ट के ऊपर जो कुरैश की थी उसके ऊपर सार सबको जमा कर दिया, और फरमाया कि ये एक नुस्खा जो हजरत हफ्सा के पास था वो मंगवाया, और फरमाया कि इस नुस्खे से लेकर कॉपीज बनाई जाएं और सब जगह पर ये कॉपीज भेज दी जाएं। अब जो कॉपी बनेगी वो इसी से बनेगी, कोई अपने मुताबिक नई वर्ड उसके अंदर कह सकता, इसी के मुताबिक सब चलेंगे, और बाकी जितने मुसहफ हैं उनको जला दिया जाए, वो खत्म है, ताकि कहीं पे भी ना रहे और ये फितना खत्म हो जाए, वरना हर कोई कहेगा हमारे पास अल्लाह की किताब है। जैसे यहूदो नसारा में हुआ, उनकी किताबें ही बदल गई इस वजह से। तो कुरान को वो एक रखना, उसको महफूज रखने के लिए उन्होंने ये किया, और ये तो बहुत बड़ी एक खिदमत थी उनकी इस चीज के लिए कि अल्लाह की किताब महफूज रहे। और आज तक देखें फिर वो एक ही उसके ऊपर है, कुरैश की लुगत पे है, जो जो अरबी कुरैश बोलते थे उसके ऊपर है। लेकिन इसको इतना ज्यादा बड़ा इशू बनाया गया कि देखो इन्होंने ये क्या किया। और फिर मैंने आपको वो तो बता ही दिया कि इन्होंने जो अपने रिश्तेदार की हद जारी करने के ऊपर थोड़ा सा डिले हुआ था, वो भी एक वाकया है। इसी तरह उबैदुल्लाह बिन उमर से किसास नहीं लिया, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा वावेला। असल में वाकया क्या हुआ कि जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अबू लूलू ने शहीद कर दिया, तो मैंने आपको बताया था अबू लूलू जो था उसने अपने आप को भी मार लिया था उसके बाद। तो उबैदुल्लाह जो थे वो हजरत उमर के जो बेटे हैं, वो इतने गजबनाक हुए कि कातिल की बेटी को मार दिया, और एक और बंदा था हरमजान, वो एक नॉन मुस्लिम ईरानी था, उसको भी कत्ल कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये था कि सब साजिश में मिले हैं। सुनाते उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जब खिलाफत संभाली, तो सबसे पहले यही मुकदमा पेश हुआ ना कि ये इन्होंने तो कत्ल कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, और हजरत अली ने उबैदुल्लाह बिन उमर को रमजान के कत्ल में कत्ल कर देने का मशवरा दिया, लेकिन दूसरे सहाबा ने कहा कि कल उमर कत्ल हुए और आज उनका बेटा कत्ल हो जाए। और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप उबैदुल्लाह को माफ कर दें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपसे बाज़पुरस ना करेगा। तो अक्सर सहाबा उबैदुल्लाह को कत्ल कर देने के खिलाफ थे। तो हजरत उस्मान ने फरमाया कि चूंकि इसका कोई वारिस नहीं है, जब किसी का कोई वारिस नहीं होता ना, रमजान नो मुस्लिम था ना, जब किसी का कोई वारिस नहीं होता तो उसका वारिस जो होता है वो खलीफा होता है, स्टेट होती है उसकी वारिस। तो फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन होने के नाते मैं हूं इसका वारिस, तो मैं अब क़िसास की बजाय मैं दियत लेने के ऊपर कहता हूँ, ठीक है। तो दियत के ऊपर उन्होंने फैसला किया कि मैं दियत लूंगा, और फिर दियत भी अपने माल से खुद अदा कर दी। और फिर उन्होंने जितनी उमदगी के साथ ये फैसला किया, इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता था। लेकिन इसके ऊपर भी उनको तान किया जाता है। इसी तरह मीना में इन्होंने 2 रकत की जगह 4 रकत नमाज पढ़ी, तो इसके ऊपर उनको बड़ा तान किया गया, लेकिन उन्होंने फरमाया कि देखो जब मैं मक्का पहुंचा तो यहां मैंने इकामत की नियत कर ली, मैं यहाँ पे मुकीम हो गया था। हो सकता है इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो वहां पे, तो मैं मुकीम हो गया और मैंने आप को ये सुना है फरमाते हुए कि जो किसी शहर में मुकीम हो तो वो वहां पे पूरी नमाज पढ़ेगा, तो मेरी पूरी नमाज होगी। लेकिन इसके ऊपर भी उनको कहा कि ये तो उन्होंने बिदत शुरू कर दी, और इन्होंने क्या शुरू कर दिया। तो आप देखें अगर सारे इल्जाम इनके ऊपर आप देखेंगे ना, तो सबके पीछे पता चलता है कि फितना परदाजी और साजिशें और ये, और इन्होंने कोशिश भी की ये कि ये खत्म हो जाए, लेकिन ये इतनी बढ़ गई थी कि खत्म करना मुश्किल था। इन्होंने अपने गवर्नरों को भी बुलाया, उनसे भी मशवरे लिए कि कैसे इन चीजों को खत्म किया जाए। हर एक ने अपने अपने मशवरे दिए, मगर आसान नहीं था। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने अपने कुछ एक टीम बनाई और उसको डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट टीम्स को भेजा कि आप जाएं और जाके देख के आएं कि वहां के लोग क्या कहते हैं, वहां के हालात मालूम करें, वहां पे क्या हो रहा है, वहां के लोगों से भी मिलें, वहां के गवर्नरों की भी सूरत हाल देखें। और ये भी ऐलान कर दिया कि हज के मौके पर हर जगह से जो भी बड़े बड़े ओहदे वाले हैं वो आए यहाँ पे, बड़े माल जो हैं, गवर्नर जो हैं वो यहाँ पे आए, और जो लोग भी इनके खिलाफ कोई शिकायत रखते हो वो भी यहाँ पे आए और मैं सामने फैसला कराऊंगा। इस तरह से वो लोगों की शिकायत सुनते थे, क्योंकि जहाँ पे भी जाहिर है चाहे सहाबा हों या उनके आगे औलादे हों, कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान ही है। तो जो गवर्नर जो ओहदों पे थे, कभी पता चल जाता था किसी ने किसी को बिला वजह मार दिया, मारा से मतलब है कि पिटाई की, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी। स्टिल ये दौर जो था ना, आप ये बातें मैं आपको बता रही हूँ तो आपको लगता होगा कि हाय कैसा वो हो गया था। स्टिल वो दौर जो था बहुत अच्छा था। आज के दौर के साथ तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, ऐसा ना समझिएगा कि आज की तरह हो गया, वो फिर भी करोड़ों गुना अच्छा था। लेकिन उस वक्त के लिहाज से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था उस लिहाज से नीचे था। अब जो इनकलाब की कोशिशें शुरू हुई तो एक साजिश की गई जो बसरा में कूफा और मिस्र के फितना परदाजों ने आपस में मिलके अपने शहर से हाजियों की तरह की मतलब वो करी के हम एहराम पहन के आ रहे हैं और इधर का रुख किया ताकि हजरत उस्मान से अपने मुतालबात मनवाएं। उन्होंने जो कह दिया था कि हज के सीजन में सब आए तो मैं सबकी शिकायत सुनूंगा, तो उन्होंने हज का सा अपना ड्रेसअप करके तो पहुंच गए। मदीना के करीब पहुंच कर शहर से 2-3 मील के फासले पर कयाम किया और चंद आदमी इस जमात के जो टॉप के थे वो बारी बारी हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वक्कास और अली के पास गए कि वो हम अपने थ्रू हमारा मामला आगे पहुंचाएं। लेकिन सब ने इस झगड़े में पड़ने से इनकार कर दिया। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फितना और फसाद का दबाना और लोगों की सही शिकायत को दूर करना, वो उनको तो ये कबूल था और उनको ये मंजूर था और वो चाहते थे कि ऐसा हो। तो उन्होंने जो ये फसादी लोग थे जब इनकी खबर सुनी तो हज़रत अली को बुला के कहा कि आप इस जमात को राजी करके ना तो वापस भेज दें, जो भी इनके मुतालबात हैं जो भी हैं उसको मतलब इस मामले को टेक केयर करें। चुनाचे हजरत अली वहां पे उनके पास गए और उनको किसी तरह कह वह के तो उनको वापस कर दिया। इसके बाद उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जुमे के दिन मस्जिद में खुतबा दिया और बड़े इस्लाही रिफॉर्म्स किए, इस्लाही स्कीमें बयान की, लोग खुश हुए, लोगों ने कहा आप सारे मसले खत्म हो जाएंगे, देखो वो भी आराम से चले गए। और मदीना की गलियों में तकबीरों की आवाजें हैं और ये बड़े लोग खुश हो गए। इतने में अचानक से घोड़ों की टापों से शोर मच गया कि घोड़े ही घोड़े आ रहे हैं और जैसे कयामत बरपा हो गई। जो बड़े बड़े सहाबा से घबरा के घरों से निकला कि कौन आ गया, तो वो जो मुफसिदों की फसादियों की जमात गई थी ना वो वापस आ गई और क्या नारे लगा रहे, इंतकाम इंतकाम इंतकाम, इसके नारे लगा रहे। हज़रत अली आगे बढ़े कि भाई आप लोगों को तो अच्छा भला करके वापस भेज जाए, आप क्यों वापस आ गए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो जा रहे थे तो हमें मिस्रियों ने कहा कि रास्ते में खलीफा का हमें एक बंदा मिला है और वो नहायत तेजी से मिस्र की तरफ जा रहा था। तो हमने उसको पकड़ा और फिर हमने उससे इन्वेस्टिगेट किया कि पता चले ये क्यों जा रहा है, उसकी तलाशी ली। तो असल में उसके पास खलीफा का एक हुक्मनामा, उस समय फरमान होता था ना एक, तो उससे वो मिला जिसमें हिदायत की गई थी कि हम लोगों की तो गर्दनें उड़ा दी जाएं जब हम मिस्र पहुंचे। तो ये तो हमसे बदअहदी हुई है और हम तो इंतकाम लेंगे इसका। अब वो वापस आ गए, हम अगली दफ़ा इंशाल्लाह देखेंगे कि फिर क्या हुआ, क्योंकि यहीं से आगे हज़रत उस्मान की शहादत का वाक़या होगा। ये सब झूठ था, वो तो कभी इस तरह की उनको इतला मिली तो वो हैरत से अपनी लाइल्मी का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस खत की खबर तक नहीं है, कौन से खत की बात कर रहे हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जब ये सब पढ़ते हैं तो दुख इतना होता है कि देखो कैसे साजिशी कामयाब होते चले गए और किस तरह से इन लोगों ने अपने जो फितने फितने जो उन्होंने सोचा और जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की, कैसे लोगों को अपने साथ मिलाया और किस तरह कर करके कहाँ तक पहुंच गए। और आपको पता है ना, तो उमर के उन्होंने उमर रजी अल्लाह के बारे में ये था ना वो हदीस, जब वो रो रहे थे, मैंने आपको बताया ही वो बात थी कि हजरत हुजैफा से उन्होंने पूछा था ना कि वो एक दरवाजा जो है फितनों के आगे एक दरवाजा है, उन्होंने कहा था लोगों और फितनों के आगे एक दरवाजा है, तो पूछा था कि वो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा। तो हुजैफा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था तोड़ दिया। तो हजरत उमर रो पड़े थे, उनको पता था कि जब मैं चला गया तो वो फितने शुरू होंगे, फिर कयामत तक फितने खत्म नहीं हुए और इस उम्मत पे नहीं खत्म हुए। और आप देखेंगे यहीं से शिया सुन्नी फसाद और ये और इतनी सारी बातें कि अगर आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसे टोटली ही डिफरेंट होगा। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए बुक में लिखा हुआ था, तो आप बताएं इस बारे में भाई, आप ये भी तो देखें बुक किसने लिखी है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो शरपसंद हैं, जो ऐसी किताबें लेकर, जब उस जमाने में शरपसंद थे ना तो आज तो उससे कहीं ज्यादा आगे शरपसंद हैं लोग। तो आप ऐसे ही बुक स्टोर से उठा लेते हैं और फिर उसके बाद पढ़ के फिर खुद भी इतने डाउट्स में मुब्तला होते हैं, फिर कहते हैं हाय ऐसा क्यों हुआ ये क्यों हुआ। तो आप देखें जरूर कि आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।